लक्षण है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। धर्म तो एक ही होता है और वो क्या है? वितरागता, जो पर्याय जो हम कहते हैं धर्म प्रकट करना है, जो प्रकट करना है वो पर्याय की बात है, परंतु प्रकट कहाँ से होगा? कहीं बाहर से जोड़ जोड़ कर नहीं होता है। तो प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है, वो स्वयं परिणमती है। तो अभी जो पर्याय में विभाव भाव परिणमन हो रहा है, तो यहाँ जो स्वभाव भाव, स्वभाव कैसा है, तो यहाँ लिखा ना वस्तु स्वभाव धर्मो, तो स्वभाव ही वितराग स्वरूप और सर्वज्ञ स्वरूप है, और वो स्वभाव जो जैसा स्वभाव है वैसी पर्याय प्रकट होना, उसको हम कहेंगे वहाँ धर्म प्रकट हुआ, धर्म की पूर्णता हुई। इस तरह से वहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, परंतु ये होगी कैसे? क्योंकि हम धर्म के नाम पर केवल पुण्य करना चाहते हैं और हमें धर्म प्रकट होगा ये मानते हैं, पर पुण्य क्या है? सात तत्वों में आपको बताना है, आश्रव तत्व है। आश्रव और बंध तत्व में आता है ये, ये बंध में वो तो कर्मादि बनते हैं, पुण्य कर्म बनता है, उसको हम उसको भी पुण्य कहते कर्मों को, और ये जो शुभ भाव है उसको भी पुण्य कहते हैं, है ना? तो ये आश्रव है और यहाँ हमें धर्म करना है। अगर हम धर्म जो प्रकट करना है वो कौन सा तत्व है? सात तत्वों में से जो करना है और जिसको हम धर्म कह सकते हैं, संवर निजरा दोनों होंगे। तो आश्रव करके संवर निजरा होगी कि नहीं होगी, हमारा प्रश्न। आश्रव में कौन से लिया? अशुभ कर्म को लिया ना, केवल शुभ कर्म को भी लिया। तो शुभ करने से संवर प्रकट होगा कि नहीं होगा, ये हमारा सवाल। यानी हम स्वयं सोचे कि धर्म के नाम पर केवल पुण्य करने से क्या हमको संवर प्रकट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आश्रव के आपके वो पांच भेद कल बताए थे यहाँ पर, कौन से बताए थे याद है किसी को? पीछे किसी को मालूम है? हमारे युवा जो बैठे हैं, क्योंकि हमको धर्म तो सबको करना है और हम सुनने को भी आए हैं जिज्ञासा पूर्वक, तो हमें पता तो चले हम क्या कर रहे हैं। तो आश्रव, आश्रव ने यहाँ शुभ शुभ भाव कहा था, मोरा द्वेष कहे थे, और उसके आपको इन्होंने यहाँ पर पांच भेद बताए थे। किसको आपको याद है बेटा? हाँ मिथ्या, तो बहुत अच्छा, सबसे पहला बड़ा आश्रव तो वही है। हाँ मिथ्या तो अविरति प्रमाद, कोई प्रॉम्प्ट कर रहे? हाँ बाकी दो याद है, बाकी दो किसको याद है आपको बताएं? पहले कषाय और बाद में योग, जो जो हमें याद करना है उसका क्रम ऐसा ही है, क्योंकि इसी क्रम से जाते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं पहले कषाय कम करो पांच में से, यह है मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय योग, जाएंगे भी इसी ऑर्डर से। मिथ्या तो चला जाएगा तब जाके सम्यक दर्शन होगा, फिर भी वो अविरति सम्यक दृष्टि है। फिर अविरतिपना यानी व्रतपना नहीं, असंयम चला जाएगा, फिर आगे की वो बातें चली जाएंगी। वो संयमी है, संयमी है, फिर भी वो प्रमाद है छठे गुणस्थान में। वो सातवें के आगे कषाय है और योग चल रहे हैं, फिर कषाय कहाँ तक चलेंगे? दसवें तक लोभ है, और लोभ का अभाव होने पर ये उत्तम शौच धर्म प्रकट होने वाला है। आश्रव धर्म की बात है ना, तो शौच कब कहेंगे? शुचिता पवित्रता कब होगी? जब कषाय पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। तो कषाय में पुण्य को लेना है कि पाप को लेना? पुण्य पवित्र है कि पाप पवित्र है? दोनों अपवित्र है, क्योंकि जो संसार में घुमावे वो पवित्र कैसे हो सकता है? समय साल में भी आश्रय अधिकार में लिखा है, भगवान आत्माएं ने मैं स्वयं जीव तत्व वो शुचिता है, यानी वो पवित्र है, और जो आश्रय है वो अपवित्र है। आश्रय में पुण्य पाप दोनों लेना। भगवान आत्मा में सुख स्वरूप हूँ, और यह आश्रय कैसे दुखमय है, वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य में दुख देने वाले, तो हम तो पुण्य इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य में सुख मिलेगा, और यहाँ तो कहते हैं कि पुण्य भी और पाप भी अपवित्र है, अशुचि है, और वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य में दुख देने वाले, तो हमें तो शौच धर्म प्रकट करना है, तो शौच धर्म प्रकट करना है, तो ऐसा उपदेश तो ऐसा ही हो रहा है, लोभ मत करो। लोभ ही अशुचि है। लोभ के अभी हमने देखा क्रोध के अभाव स्वरूप जो धर्म जो लक्षण बताया क्षमा है, मान के अभाव रूप क्या देखा था मार्दव, और माया के अभाव रूप और लोभ के अभाव रूप शौच। तो लोभ मत करो, तो लोभ मत करो कहने से क्या है पूरे ही कषाय, क्योंकि हमने देखे दसवें गुण, अभी आपने बताया ना दसवें गुण स्थान तक कषाय है, सूक्ष्म लोभ है, तब तक तो उतनी तो अशुचि है, और वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने पर यहाँ शौच धर्म पूर्ण रूप से प्रकट होगा, पर ये प्रकट करना है, वितरागता प्रकट होती है चौथे गुणस्थान से शुरुआत हो जाती है। तो आश्रय है वो अशुचि है, और आश्रयों का अभाव हो जाएगा तो शुचिता प्रकट हो जाएगी। उस जमाने में तो कुनकुंदाचार्य को पांच ही आश्रय मालूम थे, आज के जमाने में हमको छठा भी आश्रय मालूम है। आश्रय का द्वार खुला रहता ना, कौन सा ये मोबाइल नाम का उसका द्वार खुला छोड़ के हम बैठ जाते है ना, कोई तो कॉल करेगा, कोई तो न्यूज मिलेगी, कोई तो कुछ हो जाएगा, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी हम यहाँ ये सारे धर्मों का स्वरूप जो धर्मानुप्रित है, आपने बारह भावना नाम सुना है, बारह भावना मुनिराजों के, उसको अनुप्रेक्षा भी कहते हैं, उसका वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में आता है, ये कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी है, अभी मेरे हाथ में संयम प्रकाश है उसमें भी है, रत्नकरण शौकाचार में भी, सभी ग्रंथों में आती बात। उसमें धर्मानुप्रेक्षा यानी धर्म संबंधी जो चिंतन चलता है उसमें यह दशधर्म का विशेष रूप से वर्णन आता है, तो उसके अंतर्गत हम इन धर्मों की यानी उनके लक्षणों की यहाँ चर्चा चल रही है। तो यहाँ शौच धर्म के बारे में यहाँ कहते हैं कि लोभ का परित्याग करने से जो संतोष उत्पन्न होता है, ये तो जो हम बिल्कुल प्राथमिक जीवों को समझाने के लिए हमने लोभ बहुत लोभी है हम, तो लोभ का त्याग कर दिया और संतुष्ट वृत्ति धारण की, जो है उसमें संतोष धारण किया, ये तो सामान्य से जो हम कहेंगे ना कि सदाचार रूप संतोषी वृत्ति है, पर इतना मात्र धर्म नहीं है, क्योंकि इतना तो हम बहुत बार कर चुके हैं, परंतु इससे धर्म नहीं प्रकट होता। तो यहाँ धर्म की बात है, परंतु समझाया जाता है सामान्य साधारण जीवों को कि जो लौकिक में जो बहुत तीव्र लोभ करके उसके पीछे चल रहा है, तो उसको कहेंगे ये लोभ छोड़ दो और संतोष प्रकट करो, क्योंकि इतना करने से फिर धर्म क्या है वो सुनने के प्रति भी उसका कुछ मन लगेगा, नहीं तो जिसके तीव्र आसक्ति है तीव्र लोभ है, अकेले पैसे का लोभ ही लोभ नहीं कहलाता, लोभ भी बहुत प्रकार के होते, लंबा जीव ये लोभ है, जीवित रहने का लोभ, इसमें लिखा नहीं है देखो कि लोभ के भेद इसमें बताए हैं कि चार प्रकार का होता है, जीवित रहने का लोभ मैं मर न जाऊं, है ना, आरोग्य का लोभ मैं निरोगी रह जाऊं, मैं यानी कौन, मैं किसको कहा, तो जिसको शरीर को जिसने मैं माना उसी को ये लोभ होगा कि मैं लंबा जीवित रहूं, अगर मैंने अपने को जीव माना तो मरण का सवाल ही नहीं आता, मैं तो अनादि अनंत हूँ, लंबा रहने का सवाल कहाँ है, मैं तो हूँ ही, क्योंकि मैं अनादि से जीता रहा हूँ, वर्तमान में जी रहा हूँ, अनंत काल तक मैं जीता रहूंगा, मुझे मरण ही नहीं है, तो मुझे मरण का भय भी कैसे होगा। आगे लिखते आरोग्य का लोभ, आरोग्य किसका है, ये तो शरीर की जो अवस्था है वो रोगी अवस्था में नहीं चाहता, मैं आरोग्य चाहता हूँ, यानी मैं शरीर हूँ और मैं ठीक ठाक रहूँ, ये सारे पहले में पहले जो मिथ्या तो नाम का जो बहुत बड़ा पाप है कहो, ये बहुत बड़ा रोग है, शरीर का रोग मेरा रोग लगता है, मिथ्यात्व का रोग क्या अपना रोग लगता है, शरीर का रोग होते ही दौड़ाधड़ी चालू हो जाते, उसको एडवाइस देने वाले भी सारे मिल जाते हैं और उसका इलाज करने के लिए भी डॉक्टर उनके पास दौड़ाधड़ी चालू हो जाती है। यहाँ का इंडिया का डॉक्टर नहीं तो कोई विदेश का तो कुछ कम करे ना, ऐसा लगता है। तो कहते हैं वो रोग मेरा लगता है, परंतु यहाँ तो हमें आचार्य कितनी बार समझा रहे, आचार्य ने अपनी बात नहीं समझी, वो मूल अभी बात बताए ना, इन ग्रंथों के मूल कर्ता कौन है। देखो प्रत्येक पुस्तक निकालो आप, उसमें लिखा पड़ता है। देखो यहाँ कहते अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा, यानी सभी ग्रंथों के मूल कर्ता कौन है तो सर्वज्ञ देवा, और उनके उपदेशानुसार गणधरों ने जो ग्रंथों की रचना की उसको उत्तर ग्रंथ कर्ता कहते हैं, उसके बाद वाले। और फिर प्रतिगणधर देवा, यानी गणधरों ने उनके शिष्यों को समझाया वो प्रतिगणधर हो गए, और उसके वचनानुसार आसाध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय, फिर वो कुंदकुंदाचार्य के आमनाय निपुर की परंपरा से जिन्होंने वो लिखा ग्रंथ आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम, ये संयम प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, सूर्य सागर जी महाराज ने इसको लिखा है। तो कहते हैं ये तो प्रत्येक ग्रंथ में ऐसी ये पद्धति है कि इसके मूल कर्ता सर्वज्ञ भगवान है, वो तो बाद में वो ग्रंथ रूप से लिखित रूप से वो दर्शन को विकल्प आया आचार्य को, फिर उन्होंने पुष्पधन जी और भूतबली को समझाया, उन्होंने ग्रंथ लिखे, वो सब ये परंपरा से उन्होंने ये बात की, पर मूल से बात सर्वज्ञ भगवान की परंपरा से चलती आ गई। अगर कोई कहता नहीं नहीं मैंने ये रचना की, मेरा ये कोई जो कहते हैं ये इसका पंथ है, हमने ये पंथ चालू किया, तो वो तो सही नहीं है। जिसको सर्वज्ञ की मूल परंपरा का आधार नहीं है, आचार्य की परंपरा के आधार बिना जो अपने मत से जो कुछ अपनी बातें प्रस्तुत करता है, तो कहते वो मिथ्या है। यहाँ सर्वज्ञ की ओरिजिनलिटी वहाँ चाहिए ही चाहिए, इसलिए सभी मुनिराज भी ग्रंथों में लिखते ऐसे सर्वज्ञ भगवान के। कोई भी निकालो आप, जीव कांड है, कर्म कांड है, वो दबला जी है या मूल षटखंडागम है, वहाँ सर्वत्र ऐसा ही लिखा है कि सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा लिखा है या ऐसा कहा है। उन्होंने तो लिखा नहीं है, ना गणधरों ने लिखा है, लिखित रूप तो बाद में हो गई, परंतु तो पहले तो मूल धारा ऐसे ही चलती रही। तो यहाँ हम ये जो देख रहे थे शौच धर्म की बात, लोभ चार प्रकार का बताया, कौन सा? जीवित रहने का लोभ किसको होगा, जो अपने को शरीर मानकर बैठा है ना, फिर आरोग्य का लोभ, इंद्रिय विषय का लोभ। इंद्रिय विषय समझते, विषय किसको कहेंगे, इंद्रिया तो समझते हैं कौन कौन सी है, ये स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, वो तो है तो शरीर, शरीर के चिन्ह, परंतु उसके पीछे जीव उनके द्वारा जानने का कार्य कर रहा है। किसको जानता है? पुद्गल के, यानी स्पर्शन इंद्रिय द्वारा पुद्गल में जो स्पर्श गुण है, उसकी जो ठंडी गर्म अवस्था है, हल्का भारी है, उसको जानता है। तो ये ठंडा हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गर्म कड़ा नरम, ये क्या है? स्पर्शन इंद्रिय के विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंसरी ऑर्गन, समझ में आती है ना, ये उसका विषय नहीं, वो उसका उसका गेय है। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो हम जानते हैं वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। रसनेन्द्रिय के द्वारा क्या क्या जानते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कशाला चरपरा जो है वो क्या है, रसनेन्द्रिय के विषय है। घ्राणेन्द्रिय के विषय सुगंध दुर्गंध, वो उसके विषय है। चक्षु इंद्रिय के विषय क्या क्या हो गए, हाँ जो कुछ वर्ण की जो है काला पीला नीला लाल सफेद वो सब, और यदि पुद्गल के गुणों की पर्याय है उसी को हम उस इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, तो उनको कहेंगे वो इंद्रियों के विषय है। कर्णेन्द्रिय का विषय क्या है, ध्वनि, भले वो संगीत रूप से हो जो कुछ अन्य बातें हो, तो उसको कहते हैं ये सारे विषय है, इंद्रियों के विषय। उसमें क्या लिखते हैं, देखो इंद्रिय विषय का लोभ, यानी मैं इसको और वो मानता, जानने का कार्य हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, और मान रहा है कि मैं इनका भोग करता, और उसके पीछे आसक्त है। जैसे इसमें भौरे का उदाहरण दिया जाता है कि एक भौरा था और उसको तो फूलों पर इधर से उधर घूमता था, और वो कमल में आकर बैठ गया, कमल की सुगंध उसको बहुत पसंद है, तो वहाँ वो बैठ गया, तो इतने में अंधेरा होने लगा, सोचता है मैं और थोड़ा सुन लूँ और थोड़ा सुन लूँ, तो अंधेरा होता होते होते क्या हुआ, कमल की वो पंखुड़ी मिट गई। अब सोचता है वो अभी सवार सुबह हो जाएगी, मैं उठूंगा, फिर और अन्य अन्य पुष्पों पर भ्रमण करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो क्या हुआ इतने में?
मर गया।
कैसे मर गया? हाँ, हंत हंत वो आता है ना, नलिनी गजवुज्जहार, यानी इतने में एक हाथी आया और उसने वो डंडे सहित वो कमल का पुष्प उसमें से निकाल लिया और फिर वो अंदर ही कमल मुरझा का मुरझा ही रह गया और अंदर ही मर गया। यानी किसी भी एक इंद्रिय के विषय के पीछे लगा हुआ जीव उसमें आसक्त होकर मरण तक उसका हो जाता है। अरे इंद्रिय के बारे में जो लव ज्योति होती है, अग्नि होती है, तो वो तो उसमें पतंगे जो है या अन्य जो कोई उसमें झपट्टे मारते हैं, हमने कितने देखे थे, शाम को दिया जलता है, अभी तो ये ऐसे लाइट्स आ गए कांच है ऊपर, परंतु उसमें भी वो आकर टकराते हैं। तो वो चक्षु इंद्रिय के विषय में वो अपने प्राण तक गंवा देते हैं। हर एक 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 शास्त्र में तो सारे उदाहरण आते हैं कि एक एक इंद्रिय के पीछे आसक्त होकर वो अपनी जान गंवा देता है। और यहाँ हम मनुष्य कहते हैं पांचों इंद्रियों के विषय में आसक्त है, लोलुपी, और कहते हम सुखी है, इनका भोग करके हम उनमें से सुख मिलता है ऐसे उसको लगता है, क्योंकि इच्छा होती है ना, और इच्छा वो सही नहीं जाती और उसका इलाज करना चाहते। डॉक्टरों के पास कौन दौड़ते हैं? जिनको रोग है, रोग की पीड़ा सही नहीं जाती, वो डॉक्टरों के पास पहुंच जाते इलाज करने के लिए। इंद्रियों के विषयों के पास कौन दौड़ते हैं? इच्छा की पीड़ा सही नहीं जाती, मैं इन विषयों को प्राप्त करूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी इच्छा उसके उत्पन्न हुई है, क्योंकि उसको सब उल्टी मान्यता है, वो सब है ना, मान लिया कि इसमें से सुख मिलेगा, तो उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं इसको भोगू और इसमें सुखी हो जाऊं, वो पीड़ा उसको सहन नहीं होती तो इंद्रियों के विषयों के पीछे पागल के जैसे दौड़ता है और उसको लगता है ये विषयों के सुख प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, तो पैसे से सब कुछ मिलता है, इसलिए पैसे के पीछे रात दिन उसी के पीछे, 24 घंटों में कितने घंटे हमारे पैसे के पीछे जाते हैं, एक तो कमाने के पीछे, फिर और प्लानिंग करने के पीछे, वो कमाया धन वो फिर कहाँ गया है, लगाए क्या कहेंगे, और फिर वो भोगना तो है ही है क्योंकि भोगने के लिए तो कमाया है, तो उसके पीछे, यानी पूरा हमारा जीवन किसके पीछे बर्बाद हो रहा है ये हम विचार नहीं कर रहे। यहाँ क्या लिखा, इंद्रिय विषय का लोभ, और चौथा भोगों को भोग का लोभ। अभी इसमें तो और भी कितने लोभ जोड़ दो, यश का लोभ होता है और क्या क्या होता है सारा, तो इस लोभ के पीछे पागल होकर अपना पूरा समय अपना उपयोग भी उसके पीछे बर्बाद कर, हमें तो अपना उपयोग वेस्ट हो जाता है उसकी कोई चिंता ही नहीं है। अब सब आप घर से निकलते समय घर में कोई नहीं लॉक करके आना है तो क्या क्या लेते हैं विशेष प्रिकॉशन, हाँ काळजी हम करने वाले थे, अरे लाइट बंद है ना साहब, पानी, हाँ पानी का नल बंद है कि नहीं, गैस गैस बंद है कि नहीं, क्यों चलने दो ना पानी बहने दो ना, क्या होता नहीं, उसके तो बहुत अच्छी तरह से प्रिकॉशन लेते हैं। और यहाँ हमारा बर्बाद उपयोग कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है, पांचों इंद्रियों के पीछे, अन्य किसी कुछ समाज का करो, इसका करो, उसका दुनियादारी करो और कहाँ कहाँ क्या क्या करो, उस उपयोग की कोई हमें चिंता ही नहीं कि कहाँ लगा है, ये अपना ही उपयोग अगर अपने में लगा जाए तो समय दर्शन क्या केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, केवल समय दर्शन तक ही रुकेगा नहीं है, कि हमारा उपयोग स्वरूप है, जो उपयोग स्वरूप मैं स्वयं आत्मा हूँ, उपयोग का अर्थ है ज्ञान और दर्शन, उसका जो व्यापार है जानना 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 ये है, उसको कहते हैं उपयोग, ये शास्त्रीय भाषा है, छड़ाला में आता है ना, चेतन को है उपयोग रूप, तत्वा सूत्र ने भी कहा उपयोग लक्षण किसका, हाँ आपका मेरा, हाँ तो वहां तो छड़ाला में जब कहते हैं चेतन को है उपयोग रूप, तो ऐसा समझा मेरो है उपयोग रूप, हर जीव का है उपयोग रूप, ये सब बातें अपने पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मैं तो शरीर हूँ और वो आत्मा अंदर है ना, उसका वो उपयोग रूप है, ऐसा रहेगा, मैं मनुष्य हूँ शरीर रूप हूँ और मुझे अंदर जाना है आत्मा में, अभी कहाँ हो, हम स्वयं आत्मा है, अंदर कहाँ जाना है कहते हैं ऐसा, अंतर सन्मुख हो जाए, यानी अपने स्वरूप सन्मुख, अपने स्वभाव सन्मुख हो जाए, कथन पद्धति आती है, परंतु हमने अपने को बस शरीर रूप मान के हम सारा विचार करते हैं, तो कहीं भी स्टार्टिंग में वो सारा कंफ्यूजन होता है, ये करना कि नहीं करना, वो करना कि नहीं करना। अरे तुम करने वाले वो शरीर रूप तुम नहीं हो, तुम तो जानने वाले जीव हो, चेतन हो, है ना। तो ये जो अन्य अन्य जो लोगों की यहाँ चर्चा करके बताते हैं कि सबका त्याग करो, ऐसा वहाँ उपदेश भी आ जाता है। देखो अभी हम थोड़ा यहाँ रत्नकरण शाकाचार के आधार से भी कुछ बातें देखते हैं। यहाँ कहते हैं शौच का अर्थ है पवित्रता, उज्ज्वलता। बहिरात्मा, तो बहिरात्मा किसको कहते हैं? देखो आत्मा जो है, जीव है, उसके पर्याय की अपेक्षा तीन भेद बताए। कौन से भेद पीछे कोई कहेगी? लास्ट एकदम, अभी हमने एक उसमें से नाम लिया बहिरात्मा, और दो नाम आपको बताने हैं। परमात्मा, अच्छा दो तो नाम हो गए, और कोई तीसरा नाम बताएंगे आप? अंतरात्मा। बहिरात्मा किसको कहना? जो आत्मा नहीं है, ऐसे बाह्य पदार्थों को आत्मा यानी मैं हूँ मानना, यह है बहिरात्मा। शरीर मैं हूँ, यह आश्रव मैं हूँ, बाकी सब ये मैं हूँ ऐसा जो मानना है वह है बहिरात्मा। बाह्य चीजों में उसमें आत्मा यानी अहंकार यानी मैं पना मान लिया, वो जीव है बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि। अंतरात्मा किसको कहेंगे? जो आत्मा का सही स्वरूप है उसी को स्व यानी मैं मानने वाला है, उसको कहेंगे अंतरात्मा। पर अंतरात्मा होते ही पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ नहीं बन जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी स्थिरता बढ़ेगी, उतनी वितरागता बढ़ेगी, तो उसको कहते हैं अंतरात्मा। और जो पूर्ण रूप से जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट हो जाता है, उसको कहेंगे परमात्मा दशा, परमात्मा। तो यहाँ क्या लिखा है? बहिरात्मा तो देह की उज्ज्वलता और स्नानादि करने को शौच कहते हैं। शौच यानी पवित्रता, शुचिता। किसको मानते हैं? कि नहीं मैंने नहा लिया तो मैं पवित्र हुआ, गंगा में डूब लिया तो मैं पवित्र हुआ, और कहीं कहीं किसी नदी में जाकर नहाया तो मैं पवित्र हुआ। यहाँ कहते कि देह को उसने नहलाया धुलाया, इसको देह को, देह क्या है? हड्डी मांस रुधिर वो तो थैली है उसकी, तो ये जो चमड़ा उसको धोया तो हमने अपने को उज्ज्वल किया, ऐसा मानते हैं, है ना। परंतु देह तो सप्त धातु में, धातु यानी सोना चांदी, वो धातु नहीं है, ये जो खून है हड्डी है बाकी जो मज्जा है ये सब जो है उसको धातु कहते हैं। मलमूत्र से भरी, जल से धोने से शुचिपने को प्राप्त नहीं होती। देह का स्वरूप क्या है आप जाके देखो, वो डिसेक्शन हॉल में देखो या ऑपरेशन थिएटर में देखो, अंदर क्या क्या दिखता है वो देखेंगे तो दूसरे दिन खाना नहीं जाएगा। और अभी तो ऊपर से चमड़े से लिपटी हुई है, अंदर सब वैसी पूरी फैली है अपवित्र चीजों की। मैं उस रूप नहीं हूँ, उससे जुदा हूँ, परंतु उसी को स्वच्छ ठीक ठाक करने से मैं सुखी हूँ, ऐसा माना जाता है। मैं अच्छा हो गया, मैं पवित्र हो गया, ये मान्यता है। जैसे मल से बना, मल से भरा घड़ा जल से धोने से शुद्ध नहीं होता। देखो इस शरीर के कांटेक्ट में आने वाली हर चीज अपवित्र होती, कितना भी मधुर सुंदर जल, निर्मल जल मुंह में रखा और फिर उसको निकाला, मुंह में रखकर एक उबला किया, तो अभी वो कोई पीने को तैयार होगा क्या? वो स्वयं वो जीव भी उसको नहीं पिएगा, वो अपवित्र हो गया। अभी सुबह से शाम तक जो वस्त्र पहने हैं उसकी क्या दशा हो जाती है? अरे तुरंत उसको धोने को डालना पड़ता है, इससे होता है ना। तो देह के कॉन्टेक्ट में आते तो भी अपवित्र होता है। भगवान आत्मा ऐसी अद्भुत चीज है, इस देह के कॉन्टेक्ट में आने पर भी कभी अपवित्र नहीं हुआ। हाँ तीन काल में कभी अपवित्र नहीं होता। उल्टा तो मुनिराज जैसे जो है जिनकी वितरागता प्रकट हुई है उनके देह को भी पवित्रता प्राप्त होती है। हम तो उसको देह को देखकर नमस्कार भी करते हैं। अरिहंतों को भी देह है कि नहीं है? हाँ, परंतु उनकी दशा भी ऐसी हो गई कि उनका देह भी वो कैसा हो जाता है? परम अवतारी बन जाता है। अत्यंत इन्हें वो पुद्गल परमाणु भी अत्यंत ऐसे निर्मल ऐसे परमाणु आके देह की उत्पत्ति होती है। देखो उसी प्रकार शरीर भी शुद्ध उज्ज्वल जल से धोने से शुद्ध नहीं होता। शरीर को शुद्ध मानना वृथा है। बेकार। शौच धर्म तो आत्मा को उज्जवल करने से होता है। आत्मा तो उज्जवल है ही है, परंतु अभी पर्याय है, परिमन में क्रोध मान माया लोभ आदि से युक्त है, इसलिए उसको विकार से वो स्वयं मैला हो रहा है, तो उसको दूसरा कोई जल से या बाह्य पदार्थों से या परमात्मा आकर उसको शुचि करने वाला नहीं है। तो उसके स्वयं उसके हाथ की अपनी स्वाधीन बात है कि ये अपवित्रता से रहित ही मैं हूँ। ऐसे उसने अगर अपने पर्याय में जो मोहराग द्वेष आश्रय बंध आदि है उनसे रहित मैं अभी वर्तमान में उसके पीछे पूर्ण पवित्रता पड़ी है, वो पवित्रता का लक्ष्य करने से पर्याय में पवित्रता होती। हम अभी तक तो बस पर्याय में लोभ कम करने की बात करें, वो तो शुभ भाव रूप बात है, पर यहाँ हम केवल शुभ भाव से संतुष्ट होकर बैठने के अभी नहीं, क्योंकि अभी हम पहले से बचपन से दर्शन लक्षण धर्म सुनते 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 आए हैं, और बस ये लोभ कम करो क्रोध कम करो इतना ही सुनकर बस संतुष्ट हो गए, परंतु अभी कुछ आगे भी बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, केजी क्लास से ऊपर आना है कि नहीं आना। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा किसको कहेंगे, जो कायमी स्वभाव, जिसको यहाँ जीव तत्व नाम दिया, ये सब तत्वों की भाषा में आने वाली है, तो वो तो परम पवित्र चीज है, और पर्याय में आश्रय बंध वगैरह सब है, परंतु पर्याय में आश्रय होने पर भी वो जीव तत्व जो अनादि से अनंत काल तक पवित्र है, उसका अगर हम मैं उस रूप हूँ, क्योंकि जीव तत्व मैं हूँ, आश्रय तत्व को जुदा स्थान दिया है, तो उससे भेद ज्ञान जो करना है, ये भेद ज्ञान करना ही ये धर्म प्रकट करने का मूल साधन है, क्योंकि भेद विज्ञान करने से ही सम्य दर्शन होगा। जब हम क्या कहते हैं, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, क्या पुरुषार्थ करो, भेद विज्ञान करो, तो भेद विज्ञान करा, तो अभी हमें पुरुषार्थ कौन सा करना है इस भव में, सम्य दर्शन का करना है, मुनि बना प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है, कि श्रेणी का पुरुषार्थ करना है, कि केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करना है मोक्ष का, अभी हम नक्की करते हैं। अभी हमारी जो प्राप्त मनुष्य पर्याय है उसमें कौन सा पुरुषार्थ हमको करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, आप कुछ कहेंगे उधर? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, थोड़ा विचार करना है हमको, आप पीछे बताएंगे। आत्मानुभूति में हमने कहा आत्मानुभूति कैसे होगी, भेद ज्ञान से होगी, तो आत्मानुभूति का ही पुरुषार्थ करना है कि मोक्ष का पुरुषार्थ करना है, मोक्ष का करना है, आप क्या कहेंगे? अरे सब एक ही है, पुरुषार्थ करना है भेद विज्ञान करके अपने आत्मा में स्थिर हो जाना, उसी भेद विज्ञान से आत्मा की अनुभूति होगी, उसी भेद विज्ञान से आत्मस्थिरता होने से ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होगी, पंचम गुणस्थान, उसी भेद विज्ञान के द्वारा मुनि अवस्था प्राप्त होगी, बाहर का कुछ त्याग किया इसलिए मुनि अवस्था नहीं होती। हाँ, मुनियों के बाह्य त्याग होता है, परंतु उनका जो पुरुषार्थ है वो भेद ज्ञान पूर्वक अंतरंग में स्थिरता से ही मुनि अवस्था प्राप्त होती है, और वो और अधिक स्थिरता बढ़ जाती है भेद विज्ञान पूर्वक की, तो जाके श्रेणी श्रेणी चढ़ने आठवां नौवां दसवां बारवां गुणस्थान होकर केवल ज्ञान प्राप्त हो। तो भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये तिलकेचन तत्सैव अभावता बद्धा बद्धा ये तिलकेचन, इन्हें जो आज तक सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान से ही हुए हैं, और जो अभी तक बंधे पूरे पड़े हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से, ये विज्ञान है, ये साइंस है। अपने में ही जो पर्याय और जो सकायमी स्वभाव, इसमें जो भेद करके उसके लिए थोड़ा तत्वों का अभ्यास चाहिए, इसीलिए यहाँ जो शाम को तत्वों का विषय चल रहा है ना, सात तत्वों का स्वरूप उसका भाव भाषण हुए बिना केवल शब्दों में वो बताने से कुछ उसमें से अपने गले नहीं उतरने है, तो सबसे सरल बात, कुछ उसमें बहुत कठिन बात नहीं है। जीव तत्व में कायम जो मेरा स्वभाव भाव है वो तो परम पवित्र है ही है, क्योंकि वो वितराग और सर्वज्ञ अंदर स्वभाव में पड़ा है, और उसका लक्ष्य करने से ही वो पर्याय प्रकट होने वाली। कोई भगवान का यदि भगवान की भक्ति करते करते ये पवित्रता प्रकट होने वाली नहीं, क्योंकि भक्ति इटसेल्फ वो शुभ भाव रूप जो भक्ति है, एक्चुअली सच्ची भक्ति सच्चा नमस्कार किसको कहते हैं, क्योंकि मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, क्यों ये स्वभाव भाव को भगवान आत्मा कहते हैं, और उसका लक्ष्य करने से मैं उस रूप हूँ ऐसा स्वीकार करके उसमें एकाग्र होने से पर्याय में वो पवित्रता पर्याय में वो वितरागता प्रकट होती है, यही इसी को कहेंगे वो भेद विज्ञान से हमने प्राप्त किया, ये भगवान आत्मा उसको नमस्कार वहां से शुरुआत होती है। और ये मेरा वचन है वो शास्त्र में नहीं लिखा है, कोई भी शास्त्र निकालो समय सार में भी आता है ना, नमस्कार किसको कहना, भक्ति किसको कहना, कीर्तनकरों की भक्ति किसको कहते हैं। धौला शास्त्र में लिखा, अभी हमारा नवी दसवीं पुस्तक में कोई बात है कि नमस्कार भी असंख्यात प्रकार के होते हैं। अरे हमने तो एक ही देखा था, बराबर शरीर झुका के नीचे मस्तक झुका के नमस्कार करना। वहां तो कहते हैं नमस्कार तभी शुरुआत होता है जब सम्यक दर्शन हो जाता है, तब उसके नमस्कार शुरुआत हुआ, तब उसने भगवान को पहचाना, तब उसने भगवान को नमस्कार किया, उसके पहले वो नमस्कार वो सब चलता रहता है, वो सब चल रहा, उसको सच्चा नमस्कार भी नहीं कहा। जितनी अंतरंग स्थिरता होगी उतने वो नमस्कार के अलग अलग भेद होते। ये तो मुनियों के वचन है ना, अपने तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे ग्रंथों में बिल्कुल लिख के रखा है, परंतु हमको ग्रंथ खोलने के लिए फुर्सत नहीं है, खोलते हैं तो क्या लिखा है समझते नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सब फॉरेन लैंग्वेज लगती है हमको। ये तत्वों की बात होती है, उसमें द्रव्य पर्याय की बात होती है, गुणों की बात होती है, वो हमें कुछ हजम नहीं होता है, क्या कहे उस। तो यहाँ तो हमने देखा ना, वो रोगी नहीं लगता ना, मिथ्या वाला रोग रोगी नहीं लगता, तो उसका वो निरोगी होने का कोई सवाल ही नहीं, उसके लिए कोई दौड़ के नहीं जाता डॉक्टर के पास कि चलो मैं मिथ्या का नाम का रोग है, परमात्मा को पूछ लेते हैं ये कैसा दूर हो जाएगा। उन्होंने तो मार्ग बताया पूरा कैसा दूर हो जाएगा, और वो कैसा है, स्वाधीन है, सरल है, और जब कभी चाहे तब कर सकते, उसमें कोई कंडीशंस नहीं कि ऐसा होना चाहिए, इतना आपके पास रुपये पैसा होगा, इतना दान देंगे, तो उपवास करेंगे, इतनी बार वो झुक के नमस्कार करेंगे तो तुमको समय रक्षण होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं उसमें। ये शुभ भाव वाली जो बातें होती रहती है सहज रूप से होती है, जो जिस पोजिशन में है, जिस भूमिका उसको कहते हैं, वैसे उसको शुभ क्या अशुभ भाव भी आते रहेंगे, परंतु उसको तो ये नक्की करना है उस समय भी, उस पर्याय के पीछे पूरा पूरा स्वभाव भाव उस समय भी वैसा का वैसा परिपूर्ण मौजूद है, और उसका लक्ष्य करने से ही पर्याय में वो पवित्रता उत्पन्न होगी, यानी इतना स्वाधीन मार्ग। परंतु ये जो स्वभाव भाव की बात आती है, लोगों को लगता है बहुत हाई लेवल की बात करते हैं, ये तो सबसे पहली लेवल है, और व्रता ही करना आसान लगता है, और परंतु ये बात सुनकर समझना, अपने में स्थित हो जाना, ये सबसे कठिन लगती है। और आमतौर पर लोग कहते भी है, और इसी का उपदेश होता रहता है, हाँ जिसका कुछ अभ्यास नहीं उसको कहेंगे भगवान के रोज दर्शन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, जो रोज दर्शन करने आता है उसको कहेंगे खाली दर्शन करके क्या चले जाते हो, भगवान ने क्या बताया वो सुनो तो सही, स्वाध्याय करना चाहिए। अब सालों से स्वाध्याय करते उनको कहते हैं केवल वो पुस्तकी ज्ञान से कोई ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक ये सब बेकार है, तो फिर वो आत्मज्ञान कैसे करना है उसकी बात उसको समझाई जाती है। तो जो सामने वाला जीव जिस पोजिशन पे है वैसा उसको उपदेश भी दिया जाता है, परंतु हम सालों से बस बस दुनिया का भला करो, क्रोध मान माया कम करो, इतना इतना सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं, मान लेते कि हमने धर्म कर दिया। अगर हमने उसी को धर्म मान लिया तो सच्चा धर्म कब करेंगे, सच्चा धर्म क्या है उसको सुनना तो समझना चाहिए ना। अपने से जितना होता है वो तो होता रहेगा, परंतु हम सुनेंगे ही नहीं तो उस पर हमारा विचार भी नहीं होगा, और ये धर्म सारा विचारों में, ज्ञान में और श्रद्धा में होता है। हम पहले किसी क्रिया में धर्म ढूंढते हैं, पुण्य भी क्रिया में ढूंढते हैं, तभी प्रश्न आता है वो निगोद वाला जो कौन सा पुण्य करता होगा तो मनुष्य में जन्मता है। देखो ऐसा नियम है, बादर निगोद में से कोई जीव डायरेक्ट मरकर मनुष्य होकर उसी भाव में मोक्ष जा सकता है, सूक्ष्म में से आया हुआ जीव भले उसको मुनि तक की बात हो सकती है उसको, यानी निगोद से आया है, और जो जीव मोक्ष जाता है उसके तो वज्र वृषभ नाराज सहन होना चाहिए, जो सर्वोत्कृष्ट उसका बंध वो निगोद पर्याय में करके आया, मनुष्य गति बांधी, मनुष्यायु बांधी, वज्र वृषभ सहनन बांधा, ये सभी बांध के यहाँ वो आया है, उसका उदय यहाँ चल रहा है और उसी भाव में मोक्ष जाने वाला है। तो प्रश्न है तो उसने क्या पुण्य किया कि मंदिर के घंटे पर पैदा हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि शिखर जी के पहाड़ पर पैदा हुआ होगा। हम किसी क्रिया में शुभ भाव भी हम क्रिया में मानते हैं, परिणामों में नहीं मानते। किसी को यह प्रश्न नहीं उठता कि ऐसा कौन सा अशुभ भाव वहां करता होगा, प्रश्न क्या होता है शुभ भाव कौन सा करता होगा। ये सहज होते हैं, शुभ हो या अशुभ हो अपने कंट्रोल में नहीं है, हम तो उसका कंट्रोलर होके बैठे हैं और दूसरों को भी एडवाइस उसका हो देते हैं। देखो हमने सोच समझ कर नक्की किया कि 10 दिन अभी हम मंदिर में जाएंगे, रोज जाएंगे, हाँ बच्चों को लेके चले जाएंगे, रोज उसको सुनेंगे। देखो हमने सोच समझ कर ये शुभ भाव किया कि नहीं किया, तो यहाँ बैठे बैठे कोई विकल्प आता है कि नहीं किसका? अरे मैं ताला बराबर लगा के नहीं कि कुकर वो चलाया था उसकी गैस बंद किया कि नहीं, ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? वो आ जाता है। शुभ भाव हम करते हैं और अशुभ भाव हम नहीं चाहते आता है। अरे शुभ भाव भी आता है अशुभ भाव भी आता है, परंतु हम करते हैं। ये जो कर्तृत्व है ना, कर्तापना, किसका? राग का कर्तापना, इट सेल्फ मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व जो अंदर छिपा है ना अभी अपने अभिप्राय में, वो हमको दिखता नहीं है। बड़ा बड़ा मिथ्या तो दिखाई देता है, परंतु जब शास्त्र का अभ्यास होकर भी जो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो हमें तो अपने को ही टटोलना है कहाँ वो अभिप्राय में कहाँ क्या छुपा हुआ है। इसके कर्ता होकर बैठे हैं हम। राग द्वेष के शुभ हो या अशुभ हो आते हैं, वो निबोध वाले जीव में भी उसमें वहाँ संकलेश विशुद्धि ऐसा शब्द आता है, तीव्र कषाय मंद कषाय, तो उनके भी चलते हैं वहाँ पर। उनके योग्य जो एक इंद्रियों के योग्य है वहाँ पर भी, जिसको हम शुभ अशुभ कहो या तीव्र मंद कहो, वो परिणाम ऑटोमेटिक होते रहते हैं। और वैसे वैसे उनके सहज रूप से कर्म की थियरी में बोलना है तो वैसे उनके बंद भी होते हैं, क्योंकि उसको भी साता असाता का उदय भी चलता रहता है अल्टरनेटली, और उसका बंद भी होता रहता है। ये सब जगह सब चलती बात, परंतु हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम इतने हैं कि हम बिल्कुल सोच समझ के ये सब कर रहे हैं। ये हमारी भूल है। तो इसलिए यहाँ जो कहते हैं शौच धर्म जो है, यहाँ हम जरा यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ कहते हैं परिग्रह की ममता छोड़कर, क्योंकि लोग उसमें समझा जाते हैं ना, ये परिग्रह की बहुत आसक्ति है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और उसके लिए जो चाहिए उसका साधन वो पैसा चाहिए। तो कहते हैं उसकी ममता छोड़कर, देखो ममता छोड़कर पहले में पहले आया, हम तो पहले में पहले क्या क्या छोड़ू। यहाँ तो कहते हैं प्रत्येक द्रव्य अन्य द्रव्य के त्याग स्वरूप ही है। अभी आपने सुना ना, अत्यंत अभाव है, जीव और पुद्गल, जीव और उसके अन्य सभी चीजें, हमारे घर दार लक्ष्मी पैसा सब, वो तो हमारे में कभी एंटर ही नहीं हुआ, वो संयोग रूप से है। क्योंकि आत्मा में या प्रत्येक द्रव्य में त्याग उपादान शून्यत्व नाम की एक शक्ति है, ना पर का त्याग कर सकता है ना पर का ग्रहण कर सकता है, वो तो सबसे जुदा ही है, जुदा ही है। फिर भी पर की जो आसक्ति है, उस आसक्ति को परिग्रह कहते हैं, नहीं तो सबसे अधिक परिग्रह वाला चक्रवर्ती कहलाना चाहिए। बहुत अमीर है, बहुत बड़े बंगले है, इसलिए वो ज्यादा परिग्रही है ना, उसको कितनी आसक्ति है। उसके सामने कोई भिखारी बैठा है और वो देखता है मेरे पास इतना हो, मेरे पास इतना हो, तो शेख चिल्ली भी चलती ना मन ही मन में, अपने पास है कुछ नहीं है, परंतु मन ही मन में क्या मनोरे चलते हैं उनके, मनोरथ जिसको कहेंगे, तो वो क्या है, उसके प्रति जो आसक्ति है वो परिग्रह है। इसीलिए परिग्रह मालूम है कितने होते हैं? हाँ 22-24 कुछ तो होती है, कुछ तो होगा, हाँ 14-10। ये 14 को क्या कहेंगे आप? अंतरंग परिग्रह। परिग्रह वहां से शुरू होते हैं, हम तो केवल बाहर ही बाहर कितने हैं धन संपत्ति उसको गिनकर परिग्रह कहते हैं। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, तो सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। क्योंकि अंतरंग परिग्रह में पहला नाम है मिथ्यात्व, वो कभी परिग्रह लगा क्या अपना? और फिर बाद में 14 गिनाना है आपको, बोलो 14 आपने सही कहा। हाँ एक है मिथ्यात्व, फिर बाकी नहीं आपको, हाँ बोलो। देखो एक है मिथ्यात्व, फिर क्रोध मान माया लो, और नौ कषाय, एक मिथ्यात्व, चार कषाय और नौ कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा त्रिवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये सारे क्या है? परिग्रह है, इसको परिग्रह कहा। और बाह्य में फिर वो सोना चांदी धन धान्य क्षेत्र मकान वो सब दास दासी हो गए, वो सारे बहिरंग परिग्रह है। तो हमने तो बहिरंग परिग्रह सब त्याग दिए, अंदर मिथ्या जो पड़ा है तो उसको परिग्रह का त्यागी कहेंगे कि नहीं? निष्परिग्रह निर्ग्रंथ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब तक अंतरंग में ये सब पड़ा है तब उसको निष्परिग्रही नहीं कहेंगे। चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती को बहिरंग इतना सब होके भी उसको किसी अपेक्षा निष्परिग्रही कहा, क्योंकि उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंध ही नहीं था। अरे चौथी गुण स्थान में भी जब था तो वो तो दो थे नहीं उसके, समझ में आए ना, तो उस अपेक्षा से उसको निष्परिग्रह भी कहने में आता है। तो परिग्रह का त्याग वहां से शुरू होगा जब मिथ्यात्व का त्याग होगा। हमने तो केवल इतने त्यागी, हमने इतने त्याग किया, हमने इतने त्याग किया, और उसी की गिनती चलती है सालों तक, हमने कितनों का त्याग किया, वो त्याग की एक लिस्ट बन जाती है। तो मिथ्यात्व का त्याग कर किया कि नहीं किया, आप करोगे तो कर लेंगे, उसमें क्या है ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं परिग्रह की ममता छोड़कर इंद्रियों के विषयों का त्याग कर तपश्चरण के मार्ग में प्रवर्तन करना। तपश्चरण यानी प्रतपन, किसमें प्रतपन, अपने आत्मा में स्थिरता वही तप है। मैं राग द्वेष से रहित हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, ऐसा अपना स्वयं का स्वीकार करके उसी में अपना ज्ञान लगाना, उसको कहेंगे तप। वो तपश्चरण कहलाता है। केवल बाह्य कोई क्रिया का नाम तपश्चरण नहीं है, तो वह शौच धर्म है, यही वही पवित्रता है। और ऐसी पवित्रता हम आपको इस लक्षण के द्वारा उसका विचार करके प्रकट करना है। इस पवित्र भावना से भी हम यहाँ रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान।